आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में हुई हिंसा को लेकर आज लखनऊ में की उच्च स्तरीय बैठक, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया आदेश। आजम खान को नहीं मिली सर्वोच्च न्यायालय से राहत, जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन की लीज रद्द करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज। महाकुंभ के लिए प्रयागराज के 9 प्रमुख रेलवे स्टेशनों की सुविधा और क्षमता में किया जा रहा है विस्तार, 992 मेला स्पेशल ट्रेनों के संचालन की योजना। और लखनऊ में उत्तर प्रदेश और बंगाल के बीच खेला जा रहा रणजी ट्रॉफी मुकाबला हुआ ड्रॉ, आखिरी दिन उत्तर प्रदेश के बल्लेबाज प्रियम गर्ग ने बनाए नाबाद 105 रन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में हुई हिंसा की घटना को लेकर आज लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। बहराइच के हरदी क्षेत्र में कल दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई झड़प में एक युवक की मौत के बाद स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार, एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश आज बहराइच पहुंचे। पेश है हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट।
बहराइच में कल हुई घटना के बाद पुलिस ने 30 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इसके साथ ही हरदी थाना के प्रभारी निरीक्षक सहित 2 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। गोलीबारी में मारे गए युवक का आज दोपहर उनके गांव रेहुआ मंसूर में पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार कराया गया। घटना स्थल से 15-20 किलोमीटर तक आसपास आगजनी व पथराव किया गया है। स्थिति को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। फिलहाल आला अधिकारी बहराइच में मौजूद रहकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अखिलेश श्रीवास्तव, आकाशवाणी समाचार सेवा, बहराइच।
सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन की लीज रद्द करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। शीर्ष अदालत ने आज हुई सुनवाई में प्रदेश सरकार से कहा कि वह सुनिश्चित करे कि जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सभी छात्रों का दाखिला दूसरे शैक्षणिक संस्थानों में हो सके। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर यूपी सरकार की ओर से यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन की लीज को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज कोविड-19 वैक्सीन के कारण रक्त के थक्के जमने जैसे दुष्प्रभावों का आरोप लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि जनहित याचिका सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए दायर की गई थी। बरेली के रुहेलखंड विश्वविद्यालय के 22वें दीक्षांत समारोह में 94 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और 187 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में प्रदान की गई। दीक्षांत कार्यक्रम में एनआईटी जालंधर के निदेशक प्रोफेसर विनोद कुमार कनौजिया भी मौजूद रहे। इस अवसर पर राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों को विदेशी छात्रों को पढ़ाई के लिए आकर्षित करने के लिए विकसित करने पर जोर दिया। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह कल भदोई में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला का शुभारंभ करेंगे। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित देशभर से 260 कालीन निर्यातक अपने उत्पादकों का प्रदर्शन करेंगे। इस कालीन मेले में 67 देशों के 500 खरीदार शामिल होंगे। देश विदेश से इस आयोजन में भाग लेने पहुंच रहे लोगों के लिए व्यापक पैमाने पर व्यवस्था की गई है। ये कालीन मेला 15-18 अक्टूबर तक चलेगा। ग्रेटर नोएडा में यातायात प्रबंधन को अधिक कुशल और सुरक्षित बनाने के लिए प्रदेश सरकार जल्द ही इंटीग्रेटेड एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना करेगी। 227 करोड़ रुपए की इस परियोजना में ग्रेटर नोएडा के 357 लोकेशंस पर हाई क्वालिटी सीसीटीवी सर्विलांस कैमरों की स्थापना की जाएगी, जिससे ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के चप्पे चप्पे की निगरानी हो सकेगी। इस परियोजना में एक व्यापक यातायात प्रबंधन प्रणाली, वीडियो निगरानी, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली व सार्वजनिक सूचना प्रणाली विकसित होगी। वहीं प्रक्रिया के अंतर्गत इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर आईसीसी की भी स्थापना होगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकार की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रेरणा सिंह ने इस बारे में अधिक जानकारी दी।
इसमें एक ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो कि ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की ही बिल्डिंग में संचालित होगा। 2700 कैमरे हैं जो अलग अलग जगहों पर लगाए जाएंगे। ये 4 मेगापिक्सल के डे एंड नाइट फिक्स्ड कैमरे हैं और इसी के साथ PTZ कैमरास भी हैं जो 30x जूम के साथ हैं। इसमें अच्छी व्यवस्था रहेगी और बहुत अच्छे से हम चीजों को देख पाएंगे। इसी के अलावा जो इसका इम्प्लीमेंटेशन फेज है वो करीब 15 महीने का है और 5 साल का इसका ONM का फेज है।
कुशीनगर में नगर पालिका परिषद पडरौना ने क्षेत्र के सभी मंदिरों के पुजारियों को मानदेय देने की घोषणा की है। नगर पालिका परिषद पडरौना के अध्यक्ष विनय जायसवाल ने बताया कि प्रदेश में ये कदम पहली बार उठाया गया है। इसके तहत प्रत्येक पुजारी को 1500 रूपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इससे मंदिर के पुजारियों को आर्थिक सहायता मिलेगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारी यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुरादाबाद से मुंबई तक का सफर अब आसान हो गया है। रेलवे ने लालकुआं से मुंबई के लिए बांद्रा लालकुआं सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन शुरू करने का फैसला किया है। ट्रेन का ठहराव मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर भी दिया गया है। मुरादाबाद और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में व्यापारी मुंबई आते जाते हैं। पहले उन्हें मुंबई जाने के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन अब मुरादाबाद में इस ट्रेन का स्टॉपेज होने से यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। मुरादाबाद डिवीजन के डीसीएम आदित्य गुप्ता ने इस बारे में जानकारी दी।
एक गाड़ी का बोर्ड से अभी अप्रूवल हुआ है, ये सप्ताह में एक बार चलेगी। इसका इनॉग्रेशन वाला जो रन है, जो पहला रन है, वो कल बांद्रा स्टेशन से हुआ था और आज ये गाड़ी शाम 5:10 पे मुरादाबाद में आएगी शेड्यू और ये फर्दर जाके लालकुआ में टर्मिनेट होगी। उसका नोटिफिकेशन अभी निकलना ड्यू है, ये निकलते ही इस गाड़ी की रेगुलर रनिंग चालू हो जाएगी।
महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रयागराज के 9 प्रमुख रेलवे स्टेशनों की सुविधा और क्षमता में विस्तार की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रयागराज जंक्शन, सुविधारगंज जंक्शन, नैनी जंक्शन, छिवकी जंक्शन, रामबांग जंक्शन, झूसी जंक्शन, फाफामऊ जंक्शन, प्रयाग जंक्शन और प्रयागघाट जंक्शन पर मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इसके तहत इन स्टेशनों पर नवीनीकरण और विकास कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। महाकुंभ के लिए रेलवे 992 मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगा। एक रिपोर्ट।
महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन के लिए राज्य सरकार और रेलवे प्रशासन मिलकर व्यापक तैयारियां कर रहे हैं। प्रयागराज के रेलवे स्टेशनों की क्षमता और सुविधाओं में विस्तार के साथ विशेष ट्रेनों का संचालन, पैदल मार्ग की व्यवस्था और आपातकालीन योजनाओं पर भी काम किया जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए रेलवे स्टेशनों पर 90 होल्डिंग एरिया चिन्हित किए हैं। इन होल्डिंग एरिया में आपात स्थिति में श्रद्धालुओं को रोका जा सकेगा ताकि स्टेशन पर भीड़ का दबाव कम रहे और यात्रा सुगम हो। कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र तक पहुंचने में कोई समस्या न हो, इसके लिए रेलवे स्टेशन से मेला क्षेत्र तक पैदल मार्ग की भी व्यवस्था की गई है। इससे भीड़भाड़ और अव्यवस्था की स्थिति से बचा जा सकेगा। आकाशवाणी लखनऊ के समाचार कक्ष से मैं तनवीर फातिमा।
फतेहपुर में मिशन शक्ति अभियान के 5वें चरण के तहत 12वीं की बोर्ड परीक्षा में प्रदेश स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा आक्षा विश्वकर्मा को एक दिन के लिए जिलाधिकारी बनाया गया। उधर बदायूं में मिशन शक्ति अभियान के तहत आज कक्षा 12वीं की छात्रा अंशी को एक दिन के लिए थाना इस्लाम नगर का प्रभारी बनाया गया। प्रदेश में बीते 24 घंटों में अलग अलग सड़क हादसों में 9 लोगों की मौत हो गई। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में हाईवे पर आज सुबह ट्रक और कार की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में कार चालक के अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले 2 युवक और 2 युवतियां शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है। वहीं कौशाम्बी के मंझनपुर थाना क्षेत्र में टिकरी टेवा गांव के रहने वाले 4 लोग रविवार रात बाइक से धाता फतेहपुर जा रहे थे। बाजपुर के गांव के पास बाइक अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। इससे एक महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोगों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक अन्य महिला का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में उत्तर प्रदेश और बंगाल के बीच खेला जा रहा रणजी ट्रॉफी मुकाबला आज ड्रॉ हो गया। आज की पारी में यूपी के बल्लेबाज प्रियम गर्ग ने नाबाद 105 रन बनाए। इससे पहले बंगाल की टीम ने उत्तर प्रदेश के सामने जीत के लिए 274 रन का लक्ष्य रखा था। बंगाल ने चौथे दिन 3 विकेट पर 254 रन बनाकर अपनी दूसरी पारी घोषित कर दी थी। जवाब में अपनी दूसरी पारी में उत्तर प्रदेश की टीम ने 6 विकेट खोकर 162 रन बनाए थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में हुई हिंसा को लेकर आज लखनऊ में की उच्च स्तरीय बैठक, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया आदेश। आजम खान को नहीं मिली सर्वोच्च न्यायालय से राहत, जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन की लीज रद्द करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज। महाकुंभ के लिए प्रयागराज के 9 प्रमुख रेलवे स्टेशनों की सुविधा और क्षमता में किया जा रहा है विस्तार, 992 मेला स्पेशल ट्रेनों के संचालन की योजना। और लखनऊ में उत्तर प्रदेश और बंगाल के बीच खेला जा रहा रणजी ट्रॉफी मुकाबला हुआ ड्रॉ। आखिरी दिन उत्तर प्रदेश के बल्लेबाज प्रियम गर्ग ने बनाए नाबाद 105 रन। प्रादेशिक समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।